ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। लगातार बारिश के साथ आई बाढ़, भूस्खलन और डूबान में अब तक हुई 15 लोगों की मौत। बाढ़ व भूस्खलन पीड़ितों की जान बचाने के लिए पूरी शक्ति लगाने का प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड का निर्देश। राष्ट्रीय सरकार निर्माण के लिए इस्तीफा देकर मार्ग प्रशस्त करने का प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड को नेकपा एमाले का आग्रह। लगानी सहजीकरण संबंधी कुछ नेपाल आइन को संशोधन करने के लिए बने विधेयक राष्ट्रीय सभा से पारित। और भारत के कश्मीर में सेना और आतंकवादी समूह के बीच मुठभेड़ हुई, 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार रात से आई बाढ़, भूस्खलन और डूबान से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़, भूस्खलन तथा आपदा जैसी घटनाओं में काठमांडू में 1, स्यांगजा में 3, पर्वत में 2, उदयपुर में 1, कावरे प्लानचौक में 2, पालपा में 1, तनहू में 3, दांग में 1 तथा डडेलधुरा में 1 कर कुल 15 लोगों की मौत हो गई है। ये जानकारी केंद्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं डीआईजी दान बहादुर कार्की ने दी। उनके अनुसार बाढ़, भूस्खलन लगातार घटनाओं में अन्य 3 लोग लापता हुए हैं, वहीं अन्य 18 लोग घायल हुए हैं। इसी तरह तनहू में 5, गुलमी में 1, उकलडुंगा में 2, काठमांडू में 3, चितवन में 1 तथा स्यांगजा में 6 कर 18 लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालय ने दी। बता दें कि भारी बारिश के कारण देश भर में जनजीवन प्रभावित बना हुआ है और कोशी नारायणी समेत प्रमुख नदियों में जलस्तर ऊंचा है। आज भी काठमांडू घाटी में नदियों के किनारों पर पुलिस गश्त और निगरानी कर रही है। गौरतलब है कि लगातार बारिश के कारण घाटी में नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण सप्तकोशी का जलस्तर बढ़ गया है। बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने कोशी बैरेज के सभी 56 फाटक खोल दिए हैं। सुनसरी जिले के प्रमुख जिला अधिकारी रामचंद्र तिवारी के अनुसार बैरेज में पानी का बहाव प्रति घंटा 3,68,000 क्यूसेक से अधिक हो जाने के बाद सभी फाटक खोले दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नदी में निरंतर जलस्तर का निरीक्षण किया जा रहा है। पानी की सतह निरंतर बढ़ते जाने के बाद कोशी बैरेज में जोखिम के संकेत के लिए लाल बत्ती जला दी गई है और लाल झंडे लहरा दिए गए हैं। नेकपा एमाले संसदीय दल की बैठक ने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड से पद से इस्तीफा देने और मार्ग प्रशस्त करने का अनुरोध करने का निर्णय किया है। पार्टी सचेतक सुनीता बराल ने बताया कि पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आज हुई संसदीय दल की बैठक में एमाले ने फैसला किया है कि अगर प्रधानमंत्री तुरंत इस्तीफा नहीं देते हैं और राष्ट्रीय सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त नहीं करते हैं तो वे विश्वास मत के खिलाफ मतदान करेंगे। अल्पमत वाली प्रचंड नेतृत्व वाली सरकार विभिन्न राजनीतिक नियुक्तियां और निर्णय ले रही है बताते हुए तत्काल प्रधानमंत्री द्वारा इस्तीफा देने की निष्कर्ष बैठक ने निकाली है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2079-80 पेश किया गया। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड की ओर से श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री डोल प्रसाद अर्याल ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2079-80 पेश किया। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने बारिश के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़, भूस्खलन और डूबान से हो रही क्षति के विषय में सरकार का ध्यान आकर्षण कराते हुए उद्धार के काम को पहली प्राथमिकता में रखकर राहत और क्षतिपूर्ति में ध्यान देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के जीवन की रक्षा के लिए राज्य की सभी शक्तियों का उपयोग करने का संबंधित निकायों को निर्देश किया है। सिंहदरबार स्थित कंट्रोल रूम से बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री प्रचंड ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित नागरिकों के बचाव और राहत में सक्रिय रहने का निर्देश किया। प्रधानमंत्री ने बाढ़ और भूस्खलन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में हुए नुकसान पर दुख व्यक्त करते हुए आपदा से प्रभावित नागरिकों के बचाव और राहत के लिए सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री प्रचंड ने सभी नागरिकों से संभावित खतरों के प्रति सुरक्षित सावधानी बरतने का अनुरोध करते हुए सभी राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और सामाजिक संस्थाओं से सरकार के प्रयासों में सार्थक सहयोग का अनुरोध किया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ ने बाढ़ प्रभावित राजमार्गों और सड़कों को तुरंत संचालित करने की सरकार से मांग की है। महासंघ के महासचिव डेकनाथ गौतम ने आज एक बयान जारी कर सरकार से सड़कों की तुरंत मरम्मत करने और खोलने का अनुरोध किया है, क्योंकि लगातार बारिश के कारण बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग और ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। राष्ट्रीय सभा ने प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त निवेश सहजीकरण संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधित करने वाले विधेयक 2081 को पारित किया है। बैठक में प्रधानमंत्री एवं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री की ओर से संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त उक्त विधेयक को प्रस्तुत किया था, जिसे सभा ने बहुमत से पारित किया। बता दें कि सभा में विधेयक पर सांसद तुल प्रसाद विश्वकर्मा और सोनाम गिलजैन शेरपा ने संयुक्त रूप में और भगवती न्योपाने ने अलग संशोधन प्रस्ताव रखे थे। उनमें से तुल प्रसाद विश्वकर्मा द्वारा रखे गए संशोधन प्रस्ताव को बैठक ने बहुमत से अस्वीकृत कर दिया। वहीं सांसद भगवती न्योपाने के संशोधन प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक आषाढ़ 27 गते गुरूवार दोपहर 1:15 के लिए बुलाई गई है। नेकपा एकीकृत समाजवादी की केंद्रीय कमेटी बैठक ने सभी प्रदेशों के इंचार्जों और सचिवों को केंद्रीय सदस्यों की नामावली सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई बैठक ने भूगोल क्षेत्र और संतुलन बनाकर क्षमता के आधार पर संबंधित प्रदेशों को केंद्रीय कमेटी सदस्यों के नाम केंद्र में भेजने का जिम्मा दिया है। ये बात नेता सोम प्रसाद पांडे ने बताई। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा आयोजित जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति पौडेल ने कमलादेह स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान परिसर में आज आयोजित एक समारोह में महोत्सव का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड समक्ष फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल ने अपना प्रतिवेदन सौंपा है। महान्यायाधिवक्ता डॉ दीनमणि पोखरिल की अध्यक्षता में गठित फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल ने उक्त प्रतिवेदन तैयार किया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों के साथ दो अलग अलग जगह हुई मुठभेड़ में 8 चरमपंथी मारे गए हैं। पुलिस को संदेह है कि इस मामले में स्थानीय चरमपंथी भी शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आरआर स्वैन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दो अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुए हैं, जिनमें शावों की पुष्टि के आधार पर 8 चरमपंथी के मारे जाने की खबर है। ये सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। अभी ये ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद इसके बारे में ज्यादा जानकारी दी जा सकती है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लगातार बारिश के साथ आई बाढ़, भूस्खलन और डूबान में अब तक हुई 15 लोगों की मौत। बाढ़ व भूस्खलन पीड़ितों की जान बचाने के लिए पूरी शक्ति लगाने का प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड का निर्देश। राष्ट्रीय सरकार निर्माण के लिए इस्तीफा देकर मार्ग प्रशस्त करने का प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड को नेकपा एमाले का आग्रह। लगानी सहजीकरण संबंधी कुछ नेपाल आयन को संशोधन करने के लिए बने विधेयक राष्ट्रीय सभा से पारित। और भारत के कश्मीर में सेना और आतंकवादी समूह के बीच मुठभेड़ हुई, 8 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।